आयशा की मौत के छानबीन के लिए आए इंस्पेक्टर माधव वहां से जा चुके थे। उनके जाने के बाद इशिका और अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लेकिन बीच में राधिका ने इशिका को रोक लिया था। वो सुबह से ही इशिका से बात करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार राधिका को इशिका से बात करने का मौका मिल गया। सबसे अलग इशिका और राधिका इस वक्त राधिका के कमरे में बैठे हुए थे। उसे इस तरह परेशान देखकर इशिका ने पूछा, आप आयशा की मौत की वजह से परेशान हैं ना? भले ही मालविका ने धोखा दिया हो, लेकिन आपने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। उसकी मौत से आपको दुख हुआ होगा। इशिका राधिका की परेशानी का मतलब कुछ और ही समझ रही थी। राधिका ने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, वो मेरी बेटी नहीं थी और मेरा उसके लिए प्यार उसी वक्त खत्म हो गया था जब मुझे पता चला कि वो पहले से जानती थी कि तुम मेरी बेटी हो। फिर भी वो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत करती आई। मुझे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता इशिका। मैं इतनी महान नहीं हूँ जो उसके किए हुए को भुलाकर उसके जाने पर आंसू बहाऊं। तो फिर आपकी परेशानी का कारण क्या है? कहीं आप इस वजह से तो परेशान नहीं हैं क्योंकि इंस्पेक्टर माधव यहाँ पर आए थे? क्रिस्टल ने सारा मामला संभाल लिया है, हम किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इशिका ने अपनी सफाई में कहा। राधिका ने नोटिस किया कि इशिका का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा था। वो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी। उसके इस बदलाव का कारण वो सब अच्छे से समझ सकती थी। जो लड़की इतनी समझदार और सब्र रखने वाली थी, वो इतनी बेचैन रहने लगी थी कि राधिका को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिल रहा था। राधिका ने इशिका का हाथ अपने हाथ में लिया और सहलाते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह टेंशन लेती रही तो तुम्हारे बच्चे पर असर पड़ेगा। तुम बिल्कुल मेरी तरह बिहेव कर रही हो। प्रेगनेंसी में अपनी फैमिली से बचकर तो आ गई थी, पर एनी टाइम यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं वो वापस ना आ जाए। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ पैदा हुई थी, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आह, काश मैं ये कह पाती। तुम काफ़ी कमज़ोर पैदा हुई थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि तुम दोनों ट्विन्स थीं। मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं, राधिका ने अफसोस जताते हुए कहा। इशिका से बात करते हुए वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो यहाँ किस वजह से इशिका को लेकर आई थी। इशिका ने अपना मोबाइल निकाला और फिर ईशानी और रूही की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, इसका नाम ईशानी है, देखिए ना, इसकी शक्ल थोड़ी बहुत आपसे भी मिलती है, और ये इसकी बेटी रूही है जिसे मैंने और अभिमन्यु ने लीगली अडॉप्ट कर लिया है। पृथ्वी उसे लाने के लिए गया था, लेकिन युविका रूही के साथ वेकेशन पर गई हुई है, तभी टाइम लग रहा है। आप उसे देखना, वो बहुत प्यारी है। राधिका काफ़ी गौर से ईशानी की फ़ोटो को देख रही थी। सच में उसके कुछ फीचर्स राधिका जैसी लगती थीं, तो कुछ इशिका की तरह थीं। ईशानी की तस्वीर देखते हुए राधिका को याद आया कि वो इशिका को किस वजह से लेकर आई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से इस परेशानी में बदल चुकी थी। राधिका ने इशिका का मोबाइल उसे वापस दिया और फिर कहा, तुम्हारे चक्कर में मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई थी। आप मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बात करनी है। आदर्श सिंघानिया इस दुनिया से जा चुके हैं, इशिका ने जवाब दिया। इशिका, तुम अच्छे से जानती हो आदर्श तुम्हारा पिता नहीं थे। मैं तुम्हारे असली डैड के बारे में बात कर रही हूँ, जिनके बारे में जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, राधिका ने सख्ती से कहा। लेकिन माँ, इशिका ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन राधिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम कुछ मत बोलो वरना मैं फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। तुम यही सोच रही होगी कि मुझे उनके बारे में बात करके तकलीफ होती है, बस इसी वजह से तुम्हें नहीं बता पाती। तो मुझे ये तकलीफ उठानी होगी। बात तो मैं उससे भी करने गई थी, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं कि हमारे बीच सालों पहले क्या हुआ था। इशिका अब बिना राधिका को इंटरप्ट किए गौर से उसकी बातें सुन रही थी। राधिका ने आगे बताते हुए कहा, मैं उसे पसंद करती थी और उसके दिल में भी मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग थी, या नहीं मैं नहीं जानती। उसके बातों से यही लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब बात शादी की आई तो उसने अपनी माँ से यही कहा कि वो तैयार नहीं है। वो एक पार्टी की रात थी जहाँ उसके शादी से मना करने पर गुस्से में मैंने ड्रिंक कर ली थी। वो भी नशे में था और उस मोमेंट में हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। किसी को इस बात का पता ना चले ये सोचकर सुबह में उसके उठने से पहले वहाँ से चली गई थी। ओह, फिर उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनकी दो बेटियां भी हो सकती हैं। फिर तो उनके बारे में ना जानने का कोई अफसोस नहीं होगा माँ, इशिका ने मायूसी से कहा। भले ही इशिका ने कभी डायरेक्टली राधिका के सामने ये जाहिर ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में भी उसे अपने पिता की कमी खलती थी। पहले वो नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे डाउट है कि उसे पता चल गया है और तभी उसने सिंघानिया मेंशन खरीद लिया है, राधिका ने बताया। अचानक इशिका के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे। उसने आंखें बड़ी करके पूछा, लेकिन सिंघानिया मेंशन तो मिस्टर केशव सिंघानिया ने खरीदा है, तो क्या वो? इशिका बोलते हुए रुक गई थी। वो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर राधिका का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तुम्हें पता है वो घर किसने खरीदा है? राधिका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, उन्होंने इस बारे में मैसेज किया था और मुझे अभिमन्यु के साथ आज डिनर के लिए भी इन्वाइट किया है। तो क्या मिस्टर सिंघानिया मेरे डैड हैं? वो जानते हैं इस बारे में? इशिका ने कन्फर्म करने के लिए पूछा। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो बोली, हाँ, केशव सिंघानिया ही तुम्हारे डैड हैं। मुझे लगता है केशव को सच का पता चल गया है। क्या फर्क पड़ता है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं डिनर के लिए नहीं जाऊंगी, इशिका ने जवाब दिया। इशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पापा एक इतने अमीर इंसान हैं। उसके लिए उसकी माँ मायने रखती थी। इशिका ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे राधिका को हर्ट हो। इशिका ने राधिका को आश्वासन देते हुए कहा, हम आज रात डिनर के लिए नहीं जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ तुम और अभिमन्यु केशव से मिलने जाओ और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूर करो, राधिका ने जवाब दिया। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मना करना चाहती थी पर राधिका ने कहा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें मर्चेंट फैमिली से प्रोटेक्ट करना चाहती थी, बस यही वजह थी, मुझे गोवा आना पड़ा और आदर्श से शादी करनी पड़ी। क्या वो आपके सैक्रिफाइस को समझेंगे? मैंने सुना है वो बहुत गुस्सैल इंसान है, बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मेरे डैड ही क्यों ना हो, पर मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को हर्ट करे, इशिका ने चिंता जताते हुए कहा। अगर तुम प्यार से समझाओगी तो वो जरूर समझेगा, राधिका ने मुस्कुराकर कहा। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर आ गई। आयशा मर चुकी थी तो अब इशिका को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। वो इस वक्त सीधे राजवंश एम्पायर अभिमन्यु के पास जा रही थी। इशिका गाड़ी के बैक सीट पर थी। राधिका को बुरा ना लगे ये सोचकर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर उसके अंदर जज्बातों का सैलाब उमड़ रहा था। इशिका ने अपने पिता के तौर पर हमेशा से आदर्श को ही देखा था, भले ही वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, लेकिन इशिका को हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि कभी न कभी उसके दिल में इशिका के लिए प्यार जागेगा और वो उसके लिए स्टैंड लेगा।
बचपन में एक बार इशिका आदर्श के पास चली भी गई थी, पर आदर्श उसे देखकर इतना गुस्सा हो गया था कि उसने मालविका को बुलाकर बहुत डांटा था। पहले इशिका को लगता था कि आदर्श का गुस्सा इस वजह से है क्योंकि वो मालविका और उसकी बेटी है, उनकी वजह से राधिका की तबीयत खराब रहती है और उनके रिश्ते में दरार पड़ रही है, यही सोचकर आदर्श उससे गुस्सा हो जाता होगा। पर सच तो ये था कि आदर्श उससे नाराज नहीं था बल्कि उससे नफरत करता था। वो केशव सिंघानिया की बेटी थी और ये नफरत करने के लिए बहुत बड़ी वजह थी, इतनी बड़ी वजह थी कि पैदा होते ही उसे बदल दिया गया। राधिका के सामने सच आया तो उसे मारने की साजिश की गई। ये सब सोचते हुए इशिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, क्या मिस्टर सिंघानिया भी आदर्श की तरह हैं? अगर उन्होंने मुझसे नफरत की या मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश की तो क्या होगा? जो भी हो, अब मैं बच्ची नहीं रही, मुझे अपने सही गलत की पहचान है, वो मुझे मेरी खुशियों से दूर नहीं कर पाएंगे। इशिका को इस वक्त डर लग रहा था। उसने शुरू से केशव को देखा था, वो अपनी जिद का पक्का था। जब राधिका हॉस्पिटल में थी तब वो इशिका को सजा देना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था राधिका की इस हालत की जिम्मेदार इशिका है। अब जब इशिका उसी की बेटी है, ये सच्चाई सामने आ गई थी तो ना जाने वो इशिका को हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगा। सब कुछ सोचते हुए इशिका के दिमाग में अचानक कुछ स्ट्राइक हुआ। वो हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली, कहीं आयशा को मिस्टर सिंघानिया ने तो नहीं मारा? अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जल्द ही अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी होगी। इशिका को जल्द से जल्द राजवंश एम्पायर पहुंचने की जल्दी थी तो वहीं दूसरी तरफ राजवंश एम्पायर में अभिमन्यु परेशान चेहरे के साथ बैठा था। थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी कुछ पेपर्स के साथ वहां पहुंचा था जिन्हें पढ़कर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। तो मिस्टर सिंघानिया को इशिका के बारे में पता चल गया, ये तो होना ही था पृथ्वी, अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी, ये सरासर पागलपन है, वो पागल हो गए हैं, हमें मिसेस सिंघानिया को बताना चाहिए, पृथ्वी ने एग्रेसिव होकर कहा। उससे पहले हमें इशिका से बात करनी होगी। सीरियसली मिस्टर सिंघानिया? मिसेस सिंघानिया की चॉइस वाकई काफी खराब थी, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा। उनकी चॉइस आप बाद में जज कीजिएगा सर, पहले इसका कुछ कीजिए, ये जो मिस्टर सिंघानिया ने आपके ऊपर जो बॉम्ब फोड़ा है, मुझे नहीं लगता वो पीछे हटने वाले हैं, पृथ्वी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। पृथ्वी के कहने पर अभिमन्यु का ध्यान वापस उन पेपर्स पर गया, उसे सच में पहले उस बारे में कुछ करने की जरूरत थी। ये आज के लिए इतना ही, तबीयत काफी खराब थी तो चैप्टर्स नहीं दे पाई, आगे से कंटिन्यू करूंगी, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरी न्यू स्टोरी का प्रोमो जो आपको गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनर के नाम से मिल जाएगी, आप मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं या सर्च करने पर भी आ जाएगी। उम्मीद है आप मुझे न्यू स्टोरी पढ़कर सपोर्ट करोगे और पढ़कर कॉमेंट भी करोगे। दीवा गोइंटा जो अपने पापा के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए उनकी कंपनी के मैनेजर रक्षित दीवान की हेल्प लेती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। दीवा रक्षित के इरादों से अनजान थी कि वो बिजनेस डील के बहाने उसे एक अमीर बिजनेसमैन को बेचने जा रहा है। दीवा रक्षित से तो बच गई लेकिन उस रात गलती से वो पहुंच गई एक अमीर बिजनेसमैन आर्यंश कपूर के कमरे में। नशे में दीवा और आर्यंश के बीच सारी हदें टूट गई। क्या सब एक इत्तेफाक था या आर्यंश कपूर की सोची समझी साजिश जिसमें दीवा फंस गई? जानने के लिए पढ़िए गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनेयर।